बुलाए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, हम तो पहुंच गए हैं आज क्लास नौ जिसका नाम है तीन रास्ते। बाइबल के तीन रास्ते, आम तौर पे हमने सुना है दो रास्तों के बारे में। ईसाई जानते हैं दो रास्तों के बारे में, एक तो चौड़ा रास्ता और एक तो छोटा रास्ता, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने इन दो रास्तों के बारे में बात की। तो पहले हम दो रास्तों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तीन रास्तों के बारे में किसी को बताया जाता है तो बड़े हैरान हो जाते हैं, तीन रास्ते, दो तो हमने सुने हैं। लेकिन आज इस पाठ के अंत में हमें एक तीसरे रास्ते का भी पता चल जाएगा, जो बहुत बहुत कम लोगों को पता है। तो पहले पढ़ेंगे वो दो रास्ते, उसके बाद जाएंगे तीसरे रास्ते पे। तो मत्ती 7:13-14, मत्ती 7:13-14, आपका 13:14, पढ़ो।
प्रत्येक फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग को विनाश को पहुंचाता है, और ढूंढते हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सफेद है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं।
तो ये दो रास्ते क्या हैं, जो जब ये वचन पढ़ाया जाता है तो उसका अनुवाद करने वाले, समझाने वाले और समझने वाले सब दो ही बात, सीधी बात करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एक तो रास्ता स्वर्ग को जाता है, एक तो रास्ता नरक को जाता है। लेकिन क्या ये ऐसा है, क्या प्रभु यीशु मसीह के बोलने का मतलब ये था? आपको एक चीज याद रखनी है आज के बाद हमेशा, मत्ती 13:34, पढ़ो पढ़ो।
ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत कहता था।
अंडरलाइन कर लो ये बात, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया से बात करता था तो कभी भी साधारण भाषा में बात नहीं करता था, और दृष्टांत में करते थे, और दृष्टांत का अनुवाद भी दृष्टांतिक तरीके से ही होना चाहिए। अगर साधारण ढूंढने की कोशिश करोगे तो उल्टा हो जाएगा, सही अनुवाद नहीं आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने 39 दृष्टांत बोले, जो छोटी छोटी कहानियां थी चिनात्मिक रूप में। तो ये भी ये वचन बोला, ये भी एक चिनात्मक तरीके में बोला, बोले दो रास्ते हैं, दो रास्तों के बारे में बोला है। और एक बात और नोट कर लो, जो चौड़ा रास्ता है वो कहाँ लेके जाता है, विनाश,
विनाश की
शब्दों में हेरफेर नहीं कर रहा है, नर्क नहीं लिखा है, क्या लिखा है, विनाश। और बड़ा रास्ता किधर लेके जाता है, जीवन, जीवन, ठीक है। तो ये एक एक उदाहरण लेते हैं, अगर हम बोले सबसे पहले तो ये बात, कोई भी रास्ता हम पकड़े उसकी कोई मंजिल होती है, हम ये रास्ता पकड़े हैं जलंधर बाईपास से सीधे वाला, तो हमें पता है कि एक तो दिल्ली जा रहा है, एक जम्मू कश्मीर की तरफ, मतलब कोई ना कोई मंजिल है तो ही पकड़ते हैं ना वो रास्ता, है ना। तो इसी तरीके से चौड़े रास्ते की मंजिल बताई है विनाश, और तंग रास्ते की मंजिल बताई है जीवन। तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी एक उदाहरण लेनी पड़ेगी। एक लड़का या लड़की, आपका बेटा या बेटी लगाओ, अगर गलत रास्ता इख्तियार करे तो हम क्या बोलेंगे, इसने कौन सा रास्ता ले लिया है, इसको कहाँ कहाँ लेके जाएगा ये, है ना। यही बोलते ना कि इसने अपने जीवन में कौन सा रास्ता इख्तियार किया है। तो वो जीवन के रास्ते की बात हो रही है कि कौन से जीवन का रास्ता इसने ले लिया है। तो इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे दो हमें चॉइस बता रहे हैं, एक तो है चौड़ा रास्ता, एक तो है तंग रास्ता। ये कब, जब वो आए थे, ठीक है। तो ना तो वहां स्वर्ग मेंशन किया है ना नर्क मेंशन किया है, बोला एक रास्ता विनाश की तरफ लेके जाता है, एक रास्ता जीवन की तरफ लेके जाता है। अभी ये विनाश का मतलब क्या है और जीवन का मतलब क्या है, ये अभी हमें समझना है। तो पहले हम पढ़ाई करेंगे चौड़े रास्ते की, पहला रास्ता, उसके बाद पढ़ाई करेंगे दूसरा रास्ता, तंग रास्ता। तो मत्ती 7:13 को फिर से ध्यान से पढ़ेंगे।
सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह।
10:13 तो ये चौड़ा है रास्ता और विनाश की तरफ लेके जाता है, इसका क्या मतलब है, और बहुत से लोग इस पे चलते हैं। इस रास्ते के बारे में हम पढ़ते हैं नीतिवचन 14:12, नीतिवचन 14:12।
ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है।
उस रास्ते की मंजिल क्या है, एक ऐसा रास्ता है जो मनुष्य को लगता है ये सही है, लेकिन उसकी मंजिल क्या है। हाँ, ये है वो चौड़ा रास्ता जो मनुष्य को, आज सारे मनुष्य किसी को भी पूछ लो, तुम सही रास्ते, मैं तो सही रास्ते पे हूं, तुम गलत पे चले गए हो मुझे लगता है, है ना। तो मनुष्य को जो सही लगता है रास्ता वो है ये चौड़ा रास्ता, वो है पाप का रास्ता, और उसकी मंजिल क्या है, ये है वो विनाश जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला। ये कैसा रास्ता है, ये है मृत्यु का रास्ता, इसका अंत कहां होगा, मृत्यु में। क्योंकि रोमिया 6:23 में क्या लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है। तो हमें पता है फल मिलता है, फल हर एक चीज का हमें क्या मिलता है, फल मिलता है ना। आपने आर्मी में नौकरी की, उसका फल मिला, आपको पेंशन मिलती है, सब कुछ अच्छा बढ़िया सेट हो गया, फल है ना वो। तो इसी तरीके से पाप की सेवा करने का भी फल मिलता है, सरकार की सेवा की उसका फल मिला, पाप की सेवा करोगे तो उसका क्या मिलेगा, और वो क्या है,
बुरा फल मिलेगा।
नहीं, वो क्या है, पाप का फल क्या है, पाप की मजदूरी क्या है, पाप की मजदूरी मौत है, और यही मौत है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला एक ऐसा रास्ता है, चौड़ा रास्ता जो बड़ा आसान है चलने के लिए, लेकिन उसका अंत कहाँ हो रहा है? वो है विनाश। क्योंकि जरा सोचिए आप, आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपको बहुत घाटा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आप फिर से मेहनत करोगे तो क्या हो जाएगा? आप फिर से रिकवर कर लोगे, ठीक है? आपका घर गिर गया, तूफान आया, भूचाल आया, घर गिर गया और सब कुछ बर्बाद हो गया, आप फिर से क्या कर लोगे? रिकवर कर लोगे। रिश्तेदारी में कोई नाश हो गया, वो सही हो जाएगा। दोस्ती नाश हो गई, वो सही हो जाएगा। देशों सुनामी से तबाही हुई ना, लेकिन फिर से खड़े हो गए ना। बीमारियां आप पे, आज बीमारी है, आप कल फिर खड़े हो जाओगे। लेकिन एक ही ऐसा विनाश है जिससे रिकवरी नहीं होती है, वो कौन सा? मृत्यु। मृत्यु एक बार हो जाए वो वापस नहीं हो सकता, है ना? तो इसीलिए मृत्यु एक ऐसा भयानक विनाश है जिससे रिकवरी नहीं हो सकती। आपने बहुत सारे जो फ्यूनरल सर्विस होती है ना, वह अटेंड किया होगा, किसी के घर में मृत्यु हो गई, आपने देखा होगा कि लोग कैसे रो रहे हैं, अरे हमारा चला गया या हमारी चली गई, सब रोते हैं, है ना? तो तब जाके हमें पता चलता है हमारी मजबूरी का, कि हम कितने मजबूर हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बहुत भयानक विनाश है, इससे रिकवरी कौन करवा सकता है? सिर्फ परमेश्वर, और इंसान अपने तरीके से रिकवरी नहीं कर सकता है। जरा जरा सोचो, इस धरती की पहली मृत्यु कौन सी थी? इस धरती की पहली मृत्यु
आदम, वो उसने इसके भाई ने मारा था उसको, उसका नाम नहीं आ रहा।
आदम के दो पुत्र थे, एक तो केन, एक तो आबिल। तो जब आबिल से ये जलसी खा गया केन, और केन ने आबिल को क्या कर दिया? जरा सोचो, उस वक्त आदम को नहीं पता था मृत्यु क्या थी, और हवा को नहीं पता है मृत्यु क्या है, केन को नहीं पता है मृत्यु क्या है, टेलीफोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, है ना? और आदम केन ने क्या किया, आबिल को बाहर खेतों में जब वो गया हुआ वहां मार दिया। सोचो जरा, आदम और हवा सोच रहे हैं आबिल अभी तक घर नहीं आया, आ जाना, अब तक तो आ जाता है, कहाँ रह गया होगा, कैसे ढूंढे उसको, गए होंगे ढूंढने, आबिल आबिल कहाँ है कहाँ है, ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं, आबिल का कोई उत्तर नहीं है, परेशान हो गए ये वो। तो पहुंचे होंगे ढूंढते ढूंढते उस जगह पे, जरा सोचो, जरा वो विजुलाइज करो बच्चा, जरा सोचेंगे, अरे आबिल उठ, आबिल देखा हुआ लेटा हुआ सोया हुआ है और खून निकल रहा है, आबिल उठ आबिल उठ, क्या कर रहा है, इतना क्या सो रहा है तू, उठ आबिल, आबिल का कोई, आबिल उठ। आदम और हवा, हमने कभी इतनी गहरी नींद में इसको सोते हुए नहीं देखा होगा, देखा हुआ बॉडी वगैरह टच की होगी, अरे ये तो बहुत वो ठंडी पड़ गई। कितनी देर बाद उनको जाके पता चला होगा कि ये तो मर गया है। इस मौत के बारे में परमेश्वर ने हमें अभी की वाटिका में बोला, कितनी देर बाद जाके पता चला होगा, जरा
मौत क्या होती
है। ये है वो रास्ता पाप का, जिसकी मृत्यु, जिसका अंत है, जिसकी मंजिल है मृत्यु, ये परमेश्वर ने हमें बताने की कोशिश की। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो चौड़ा रास्ता है ना, जो विनाश की तरफ लेके जाता है, विनाश का मतलब है पाप, मृत्यु, और ये रास्ता है पाप का रास्ता। और हर मनुष्य समझता है कि मैंने जो रास्ता इख्तियार किया वो सही। आप अपने पड़ोसी से पूछो, उसको बोलो तुम गलत रास्ते पे हो, तुम्हारे जीवन का रास्ता सही नहीं, वो क्या बोलेगा? तो मनुष्य को लगता है कि जो मैंने रास्ता लिया है वो सही है, लेकिन उसका अंत क्या है, उसकी मंजिल क्या है? अगर आपने दिल्ली का रास्ता पकड़ा है तो आप दिल्ली ही पहुंचोगे, जम्मू नहीं पहुंच जाओगे, है ना? मंजिल बदल नहीं जाएगी। तो इसी तरीके से ये है पाप का रास्ता, और इस पाप के रास्ते की मंजिल और अंत है क्या? मृत्यु। तो ये बात तो साफ साफ पढ़ लेते हैं हम भजन संहिता 51:5।
देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पर पाप के साथ अपनी माता की गर्भ में पड़ा।
तो ये जो पाप का रास्ता हम कब ले लेते हैं पता है? जब हम माँ की कोख में ही होते हैं। और रोमिया 5:12 पढ़ लीजिए।
एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस मृत्यु से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया।
देखो, एक के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु, और मृत्यु
सब में फैल गई।
इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है कि जब आदम ने पाप कर दिया था ना, तो जो उसके पेट में थे सब उसी रास्ते पे चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक आदमी है आदम, जिसने हर एक रास्ते का नीम पत्थर होता है ना, रीजन काटा जाता है, नीम पत्थर रखा जाता है, अब से ये रास्ता है। इसी तरीके से ये चौड़े रास्ते का रीजन काटने वाला कौन था? जो मृत्यु की तरफ लेके जाता है। आदम को लगे 930 साल अपनी मंजिल पाने के लिए, आजकल क्या है 80-60, कोई उससे भी जल्दी, कोई 30, कोई 15, कोई उससे भी कम। तो 6,000 साल बीत चुके हैं लगभग। ये रास्ता इतना आसान हो गया अभी, जैसे आप आज से 100 साल पहले हमारे बुजुर्ग समझ लो, कोई 100 साल 150 साल ऐसे उम्र चलती थी। लेकिन अब ये रास्ता इतना स्मूथ हो गया है कि बहुत तेज चलती है गाड़ी, शताब्दी एक्सप्रेस 4 घंटे में दिल्ली। तो एक तरह का क्या बोलते हैं, बड़ा प्लेन हो गया, गाड़ी जाती है 200 की स्पीड से जाती है। तो ये चौड़ा रास्ता भी इतना आसान और इतना बढ़िया है दिखने में, सब यही जाते हैं और बहुत जल्दी मंजिल भी मिल जाती है, किसी को 60, किसी को 80, बहुत जल्दी मिल जाती है ना? यानी कि उसका मंजिल मृत्यु, मृत्यु मिल जाती है ना? तो यही है वो रास्ता, इतना आसान हो चुका है ये पाप का रास्ता। मैं झूठ सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ, झूठ क्या है? परमेश्वर की नज़र में कोई अच्छा झूठ कोई बुरा झूठ नहीं है, झूठ मतलब झूठ। ये माना जाता है कि हर एक इंसान रोज एक दिन में 250 झूठ बोलता है। आपने कभी, इतना आसान हो चुका है ये कि महसूस भी नहीं किया होगा। उदाहरण के तौर पे जब हम किसी को मिलते हैं, ब्रदर आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या बीमार हो या जुकाम हो या शांति नहीं है या कुछ भी नहीं है, कैसे हैं ब्रदर?
ठीक हूँ।
क्या ये? उसके बाद बिजनेस में कितना झूठ बोलना पड़ता है? आज झूठ बोलते, झूठ नहीं बोलोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, आपकी लाइन में तो खास करके, ड्राइविंग में तो बहुत ज़्यादा है ना। फिर धंधे में देख लो, ये प्राइस 10 रुपए की चीज आती है कितना बढ़ा के बेचा जाता है, डिलीवरी, अरे बस आप दुकान से निकला भी नहीं होता सर, अब आदमी निकल गया आपके घर पहुंचने वाला होगा, फिर बुलाते रहते अरे जल्दी 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 निकल जाओ, घर पे कितना झूठ बोला जाता है, खाना टेस्टी भी नहीं हो, खाना कैसा बहुत स्वाद है, टेस्टी नहीं भी हो तो भी बोलना पड़ता है, क्या क्या करें, बच्चे बच्चे जब आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं तो उसको सोजा शेर आ जाएगा बाहर, पुलिस वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, कितने झूठ बोल, मतलब कितना आसान हो चुका है ये रास्ता स्मूथ, कि हमें झूठ बोलते जरा भी महसूस नहीं होता कि ये झूठ है ना। और कई बार मेरा दिल कर रहा है बहुत कुछ अच्छा खाने को, आपके घर आया तो ये खाना है, लेकिन कैसे बोलूं से, आप मुझे ब्रदर वो खाओगे, नहीं ब्रदर मैं ऐसे से मैं खा के आया, नहीं मुझे भूख नहीं, भूख लगी भी हो मैं बोलूँगा, चाय पीने को मन कर रहा है हो फिर भी मैं बोलूँगा आ हम क्या, नहीं 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 हम पी के आए, नहीं चाहिए, नहीं नहीं ब्रदर पी लो, अच्छा चलो ठीक है। तो कितना आसान हो चुका है झूठ बोलना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कितना स्मूथ हो गया ये रास्ता, ये तो एक उदाहरण झूठ की। दूसरी उदाहरण, किसी को लेके आप मजाक उड़ा रहे हो, आजकल आपने देखा होगा मजाक उड़ाने का तरीका क्या है लोगों का, एक इंसान को पकड़ा जो सीधा साधा जो बोलता नहीं है उसको 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 मजाक उड़ाए जा रहे हैं, उसको बेचारे को सांस भी नहीं लेने दे रहे हैं, अपना मतलब के खुशी के लिए हम उसकी बैंड बजाए जा रहे हैं, है ना, उसे बोलते टाइम पास है। तो स्वार्थीपन कितना बढ़ गया है आज, हम घर में देखो, परिवारों में देखो, बस में देखो, ट्रेन में देखो, प्लेन में देखो, स्कूल में देखो, हर एक को बस अपना अपना कंफर्ट, अपना स्वार्थ, दूसरा भाड़ में जाए। एक इंसान लाइन में लगा हुआ है आज टिकट लेने के लिए, स्वार्थी इंसान क्या आता है, सब लाइन वाइन तोड़वा के पैसे वैसे दे के लाइन तोड़वा के अंदर से टिकट बुकिंग करवा के निकल जाता है। तो स्वार्थपन कितना, स्वार्थी कितना बंद, ये सब जो है ये चौड़े रास्ते के गुण हैं, जिन पे आज क्या है सारा संसार चल रहा है, सारा संसार चल रहा है ना, लेकिन इसका अंत क्या है, इसका अंत है विनाश, और वो विनाश क्या है, मृत्यु। हमारा चार्ट आपको देना है, घर पे पड़ा है, ये है वो चौड़ा रास्ता जो नीचे को लेके जाता है, मृत्यु, मृत्यु की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो आदम से लेके प्रभु यीशु मसीह तक एक ही रास्ता था, चौड़ा रास्ता, क्योंकि तंग रास्ता कब खुलता है, जब हैकल में ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो जाता है, पर्दा फट जाता है, वो है दूसरा रास्ता खुलने, लेकिन आदम से लेके प्रभु यीशु मसीह तक सब एक ही रास्ते में जा रहे थे, वो क्या, मृत्यु। इसराइल को परमेश्वर ने एक तरीका दिया था इससे बचने का, मृत्यु से बचने का, लेकिन कोई भी इसको पूरा नहीं कर सकता था, वो थी व्यवस्था, वो थे वो 10 हुक्म जो पूरे इंसान पूरे नहीं कर सकता, सिर्फ एक नहीं किए वो प्रभु यीशु मसीह, और कोई पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है चौड़ा रास्ता, समझ आ गए, कोई बात नहीं समझ आई हो तो बोलिए। तो चलो अब हम दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा रास्ता है तंग रास्ता, साकेत रास्ता, जो खुलता है कब, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ। तो ये पढ़ लो इब्रानिया 10:19-20,
इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से,
अंडरलाइन, एक नया और जीवित रास्ता किससे मिलता है, यीशु के लहू से, हाँ,
मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है।
तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ एक नया रास्ता खुलता है, नया और जीवित रास्ता। और इसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 7:14 में बोले, साकेत है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है, तुम इस रास्ते से क्या करो, दाखिल हो। अभी ये तंग रास्ता या साकेत रास्ता जो जीवन की ओर लेके जाता है, इसका क्या मतलब है, ये क्या है रास्ता, और ये कैसा है जीवन जो हमें मिलता है इस तंग रास्ते पे चल रहे। तो इस रास्ते के खुलने का सबसे बड़ा निशान चिन्ह वो आप जानते, मैंने बताया ना, वो जो हैकल में वो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। मत्ती 27:51 में पढ़ लो, बहुत से वचन है लेकिन आपको मैं एक ही वचन बोलूंगा, 27:51 जी।
यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान।
नहीं, 27:51
और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई।
तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा। ये जो पर्दा था ये इतना भारी पर्दा था, पता, बहुत भारी पर्दा था, ये बहुत भारी। क्या था कि जो तंबू, आपको पता है मूसा को तंबू बनाने के लिए बोला था प्रभु परमेश्वर ने, मूसा को बोला एक तंबू बनाओ, तंबू में एक आंगन है, उसके बाद तंबू की चार दीवारी और अंदर तंबू के दो हिस्से, एक तो पवित्र स्थान एक तो अति पवित्र स्थान। तो अति पवित्र स्थान में कोई नहीं जाता था, सिर्फ मुख्य याचक, और वो भी साल में सिर्फ एक बार। और वो पर्दा ऐसा नहीं जैसे अपने पर्दे ही, वो पर्दा बहुत मोटा पर्दा था और दरवाजा ऐसे खुलता नहीं था, वो पर्दे के नीचे इतनी जगह थी ऐसे, उससे रेंग के जाना पड़ता था मुख्य याचक को। मतलब वो इंसान के बस की बात नहीं थी कि उसको उठा ले या हिला ले, नहीं, तो नीचे से ही जाना पड़ता था, वो भी साल में सिर्फ
एक बार।
ज्यादा बार गया तो मर जाएगा। ये बात पढ़ लो इब्रानिया 2:9-8 इब्रानिया 9:9-8
क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है, दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है।
तो इस एक तो पवित्र स्थान था, एक तो अति पवित्र स्थान था।
उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हरुण की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पेटियां थी, उसके ऊपर दोनों तेजोमय करुबे थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किया हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इसी रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ।
देख लो वो प्रकट नहीं हुआ,
दूसरा नहीं हुआ।
हाँ, आगे पढ़ लो।
यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिससे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते।
देखो तो ये बात आपको समझ लग गई ना कि वो प्रकट नहीं हुआ रास्ता, तो उसमें महायाचक एक ही बार जाता था और वो जो तंबू
प्रकट का मतलब वो के लिए खुलेगा नहीं है ना,
खुला हाँ खुलेगा नहीं, हाँ मतलब किसी को पता ही नहीं उधर क्या है, सिर्फ महायाचक को ही पता था कि उधर क्या है।
वो भी एक साल में एक बार,
साल में एक बार जाता था और बिना कुर्बानी के नहीं जाता था। तो ये तंबू ये जो अति पवित्र स्थान कहलाता था, इसको पता है ये इस पे ऐसे ऊपर से बंद था, ये जैसे ये है ना बंद ऐसे बंद, ऊपर भी पर्दा था साइड पे भी ऐसे तंबू, ठीक है। लेकिन आकाश से जो लोग देखते थे वो क्या थी, आकाश से उसको बोलते हैं शकीना ग्लोरी, शकनाया ग्लोरी, शकीना ग्लोरी। शकीना क्या थी, एक धुएं का बादल सा पाइप सा आकाश से अति पवित्र स्थान में रहता था, ऐसे ठहरा रहता था। हाँ तो इसका मतलब क्या था, परमेश्वर की मौजूदगी। तो अति पवित्र स्थान है तस्वीर स्वर्ग की। किसी को नहीं पता स्वर्ग क्या है, महायाचक कौन है पता, प्रभु यीशु, तस्वीर नमूने है ये, तो मैं आप समझ जाओगे। तो कहने का मतलब ये अति पवित्र स्थान जहां परमेश्वर निवास करते हैं यानी स्वर्ग। तो ये किसी को नहीं पता था कब तक, जब तक वो फटा नहीं, जब तक वो जो दीवार थी अंदर की वो खत्म नहीं हुई। तो प्रभु यीशु मसीह जब सूली पे चढ़े, यही था वो पर्दा जो ऊपर से लेके नीचे तक फट गया और एक नया रास्ता खुल गया। कहाँ को जाने का, स्वर्ग जाने का। तो ये छोटा रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह ने खोला, पहला रास्ता आदम ने खोला, दूसरा रास्ता किसने खोला, प्रभु यीशु मसीह ने, जो कहाँ लेके जाता है, स्वर्ग की तरफ। और इसे एक नाम दिया गया है उद्धारता। इब्रानिया 2:3-4 पढ़ लो।
तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं।
ऐसा बड़ा उद्धार अगर हम उसकी अनगहली करें, अगर उसको इग्नोर करें,
कैसे जीवित करें।
तो इसको बोला ऐसा बड़ा उद्धार, मतलब पौलुस बोल रहा है ये है स्वर्गीय उद्धारता। और फिलिपियां 3:14 में देख लो क्या बोलता है वो, फिलिपियां 3:14।
निशानी की ओर दौड़ चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया।
इनाम, ऊपर का इनाम क्या है पता आपको, जो बोला ना इनाम पाऊं, निशाने की तरफ भागा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जो ऊपरी बुलावे में है, वो इनाम। पढ़ लो रोमिया 2:7, रोमिया 2:7, रोमिया 2:7।
जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और अनादर आदर और अमरता की खोज में है।
अमरता, अमरता का जीवन, अमरता, अमरता का लोगों को पता नहीं है, आपकी आर्मी में बहुत बोलते हैं वो अमर हो गए, अमर शहीद जो हैं, है ना, अमरता का लोगों को ज्ञान है। अमरता का मतलब पता क्या होता है? जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती।
अच्छा,
अमरता होती है जो मर नहीं सकता, जो मर नहीं सकता, जिस पे मौत नहीं आ सकती, इसे बोलते आमर। आ मर, इस पे मौत नहीं आ सकती। तो ये बाइबल बोलती है। तो आपकी आर्मी वाले अमर है? कोई नहीं अमर है, सब तो मर रहे हैं। अमरता किसकी थी?
और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा।
अमरता होती है बिना मृत्यु वाली। तो इस पूरे ब्रह्मांड में अमरता कितने लोगों के पास थी? यीशु मसीह के पास भी नहीं थी। पहला तिमोथी 6:16, दो 6:16
और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है।
तो
उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानी रहेगा। आमीन।
परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता,
दुनिया
कोई भी नहीं देख सकता है। आपने नोट की, आज आज बहुत लोग देखते हैं, फिर वो पॉलुस गलत है, फिर ये गलत है, बोलता है ना तो किसी ने देखा
ना भी देखा,
क्योंकि इन आंखों के साथ परमेश्वर को देखना है तो स्वर्ग में जाना है, फिर देखेंगे। तो ये सिर्फ एक के पास थी, बोला ना तो उसको किसी ने देखा और ना ही देख। तो ये यीशु मसीह हो सकते हैं? यीशु मसीह को तो सबने देखा, इज़राइल ने देखा, यहूदियों ने देखा, चेलों ने देखा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह तो अमर नहीं थे, उनपे तो क्या आई? मृत्यु आई। ये अमरता सिर्फ एक के पास थी, वो था परमेश्वर, और यही जीवन बाद में पता किसको मिला? प्रभु यीशु मसीह को। जब
उन्होंने ये बोला था कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है,
जब अपनी वफादारी साबित की, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे धरती पे दूत भी मर सकते हैं, मर नहीं सकता तो कौन? सिर्फ परमेश्वर। अमर का मतलब होता है जो कभी भी मर नहीं सकता, जिस पे मृत्यु संभव ही नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति को पता क्या बोलते हैं? लूका 9:60 में क्या बोलते हैं? मुर्दों को अपने मुर्दे
गाड़ने दे।
इसका मतलब क्या है? मुर्दे दो तरह के हैं, एक तो जीवित मुर्दे। हाँ जी, हम तो पढ़ लो।
उसने उनसे कहा, मरे हूँ अपने मुर्दे गाने।
तो आप क्या है? जीवित मुर्दे। अगर मैं आपके सामने मर जाऊँ तो मैं मरा मुर्दा। तो सब प्रभु की नजर में, परमेश्वर की नजर में सब क्या है? मुर्दे। आज नहीं तो कल इनको क्या है?
मरना
ही है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह अमर थे या नहीं, ये वचन में पढ़ लेते हैं ना। प्रकाशित वाक्य 1:18,
मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास।
मैं मर गया था, अमर नहीं था, लेकिन अब अमर हो गया हूँ। परमेश्वर ने मुझे जो जीवन परमेश्वर के पास है वो क्या कर दिया है?
दे दिया है।
ये बात पढ़ लो, यूहन्ना 5:26।
यूहन्ना
क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसके पुत्र को भी ये
तो जो जीवन पिता के पास था वही जीवन पिता ने किसको दिया? तब जब सलीब की मृत्यु, तो आज वो अमरता का जीवन कितने लोगों के पास है?
दो लोग,
पिता परमेश्वर और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और यही जीवन अमरता का किसको मिलेगा? कलीसिया। किसको मिलेगा? दूसरा पत्रस 1:4, दूसरा पत्रस 1:4,
जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस तार से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ।
ईश्वरी स्वभाव, परमेश्वर वर्ग का जैसा जीवन, उसमें तुम भी क्या हो जाओ? हिस्सेदार हो जाओ। तुम्हें भी वो क्या हो जाएगा? जीवन मिल जाएगा। ठीक है, कितना सोची जाए तो कितनी बड़ी बात है ये। परमेश्वर जो तंग रास्ते पे चलते हैं उनको क्या देगा? अमरता का जीवन। पहला कुरंथिया 15:53
क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहले,
नाशवान का नाश मतलब जिसका नाश, अविनाश जिसका नाश नहीं होगा,
पहले, और यह मरणहार देह अमरता को पहले। जो मरने वाली है वो अमरता को पहले।
ये मरणहार देह है, ये छोड़ के ईश्वरी स्वभाव जब मिल गया तो क्या हो गए? कोई मौत नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 20:6 पढ़ लो ये बात, ये है अमरता।
धन्य है, धन्य और पवित्र वह है जो इससे पहले पुरुषार्थ का भागी है, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके 7,000 वर्ष तक राज्य करेंगे।
धन्य और पवित्र वो जो कौन से पुनरुत्थान के भागीदार है? पहला। अगर पहला पुनरुत्थान है तो उसके बाद मतलब और भी कुछ होगा ना। तो पहले पुनरुत्थान वाले कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की, जब जी उठेगी तो उनके मृत्यु का कोई अधिकार
नहीं होगा,
यानी वो अमर होंगे, उनपे अभी मौत नहीं आएगी। ये है वो इनाम, ये है वो जीवन, अमरता का जीवन, जिनको जो किनको मिलेगा? बहुत थोड़ों को, बहुत थोड़े। जब मैं गिनती बताऊंगा आपको आप हिल जाओगे। तो उनको मिलता है अमरता का जीवन। ये सारे ईसाइयों की बात नहीं हो रही, ये बात याद रखना कि जितने आज ईसाई हैं सबको ये मिलेगा, ये बहुत थोड़ों को। और वो कौन होंगे पता? जो वफादार होंगे, यीशु मसीह की फोटोकॉपी, यीशु मसीह की फोटोकॉपी, बस इतना ही है। तो इसलिए पौलुस क्या बोलता है, ये किनको मिलेगा? रोमियो 12:1,
इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सुनर चलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारे आत्मविश्वास है।
शरीर को बलिदान चढ़ाना है, जीवित बलिदान, मुर्दा बलिदान नहीं, जीवित बलिदान, और वो भी परमेश्वर को स्वीकार होना चाहिए। ऐसा ना हो परमेश्वर को स्वीकार है और आप बलिदान चढ़ाए जा रहे हो। ऐसा क्यों और इसका क्या मतलब है, ये मैं गहराई में आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। तो ये बात हो रही है एक बलिदान वाले जीवन की, कि प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे चलते हुए आपको कदम कदम पे बलिदान देने हैं, तब आपको ये जीवन मिल सकता है। फिर से पढ़ो फिलिपियां 1:29। खाली प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ही नहीं करना है, उसके लिए दुख भी उठाना है। फिलिपियां 1:29।
क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए बुद्धि उठाओ।
आज कितने लोग हैं जो कितने के ईसाई लोगों की छोड़ो ईसाई जो मसीह के लिए दुख उठाना चाहते हैं। दूसरा तिमोथियस 2:11-12 बार बार पढ़ लो ये बातें, क्योंकि इसके बिना वो अमरता का जीवन दूध का 11:12
ये बात सत्य है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम नीरस से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे।
तो ये शर्तें हैं कुछ, अगर उसमें उसके साथ मरते हैं तो ही होगा ऐसा। तो एक क्रिश्चियन को खाली इस पे विश्वास नहीं करना, ठीक है हम अभी क्रिश्चियन बन गए, क्रिश्चियन कोई स्टैंप नहीं है, धर्म नहीं है कि चलो भाई बपतिस्मा लिया क्रिश्चियन बन गए। क्रिश्चियन शब्द का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, प्रभु यीशु मसीह का चेला जो उसके कदमों पे चलता है, जो दुख उठाने के लिए तैयार है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मरता है, जो बलिदान वाला जीवन देता है, जो हर रोज का बलिदान परमेश्वर को देता है, परमेश्वर ये मेरा आज का बलिदान ले स्वीकार कर। और बहुत कम है ऐसे क्रिश्चियन, ऐसे ईसाई जो जिनको ये रास्ता मिलेगा और वो जीवन मिलेगा। तो इस रास्ते के लिए को प्रभु यीशु मसीह एक और बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, जिसको आज लोग समझते गलत समझते हैं, बोलते हैं एक अमीर का बड़ा मुश्किल है, अमीर तो प्रभु के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु के कहने का मतलब ये नहीं था। ये पढ़ लो मत्ती 19:24 में एक बात बोली ना प्रभु यीशु मसीह ने,
तुमसे सिर्फ कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है।
तो एक धनवान प्रभु यीशु मसीह का मतलब ये नहीं था कि धनवान कर ही नहीं सकता, कर सकता है लेकिन बहुत कष्ट है, बहुत कठिन है, क्योंकि सब कुछ, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये भी बैग ले लूं अपने साथ, ये भी, ये तो खाली हल्के होके अकेले ही निकलना पड़ेगा,
अकेले भी मुश्किल है।
हाँ बहुत मुश्किल है। तो प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या था, प्रभु यीशु मसीह याद रखना दृष्टांतों में बात करते थे, और प्रभु यीशु मसीह जो कुछ होता था ना इर्द गिर्द उसको लेके बोलते थे। तो उस वक्त क्या था, यरूशलम के बाहर एक बहुत बड़ा गेट था, बहुत बड़ा गेट, आपको पता होगा पिछले रियासतों में ऐसे गेट हुआ करते थे, बहुत बड़ा गेट था। तो वो रात को क्या हो जाता था, बंद हो जाता था, और जो बिजनेसमैन होते थे, जो बाहर जाते थे व्यापार, व्यापारी लोग, ऊंटों पे उस वक्त होता था बिजनेस। उस वक्त गाड़ियां तो नहीं थी, ऊंट थे ना, क्योंकि ऊंट की कैपेसिटी बहुत होती है, दस दस दिन भी पानी ना पिए तो चलता है। तो रात को जो बड़ा गेट होता था वो बंद हो जाता था, उसके साइड पे एक छोटा
गेट होता है।
तो जब वो रात देर सवेर हो जाती थी तो उनको क्या करना पड़ता था,
गेट
से निकलना है। कैसे निकलना है पता, अभी ऊंट पे लगा हुआ सारा सामान उतारना है और ऊंट को बिठा के निकालना है अगर अंदर बाहर जाना है, फिर से वो सारा सामान लेके आके ऊंट पे डालना है, फिर निकलना है। तो बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन था वो काम। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, एक धनवान जो जिसको आनंद आराम भरा जीवन की आदत पड़ गई है, उसके लिए ये काम बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बहुत कठिन रास्ता है, कुर्बानी का रास्ता है। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे जब हम कलीसिया की पढ़ाई करेंगे 17, 18, 19 अध्याय में। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, ये है वो तंग रास्ता जो बहुत बड़ी महिमा को लेके जाता है, और बहुत कम ईसाई हैं जिनको ये रास्ता मिलता है। तो ये तो दो रास्ते हैं जिनके बारे में आपने सुना है, एक तीसरा रास्ता भी है। ये तीसरा रास्ता क्या है? क्योंकि पहला रास्ता विनाश को ले गया, मृत्यु को। दूसरा रास्ता बहुत कम लोगों को
जीवन,
वो महिमा ईश्वरी सद्भाव अमरता का जीवन मिल गया। बाकी बची हुई मनुष्य जाति का क्या? बस खत्म। यही है इंडिया परमेश्वर की योजना का? नहीं, उन लोगों का क्या जिन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ही नहीं किया, जो प्रभु यीशु मसीह से पहले मर गए, जिनको मौका ही नहीं मिला प्रभु यीशु मसीह को जानने का, उनका बेचारों का क्या, उनकी क्या गलती? पाप तो आदम करने वाला, उनकी बेचारों की क्या गलती, वो मृत्यु में चले गए। सही। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने कोई योजना नहीं रखी। ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या प्रभु यीशु मसीह सारे संसार का बचाने वाला नहीं? बचाने वाला। तो हमने तो देखा दो ही रास्ते हैं, एक तो प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे चलने वाले का, और एक तो चौड़े रास्तों पे चलने वाले का। बाकी बची हुई मनुष्य जाति का इसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? क्यों क्रिश्चियन ईसाई धर्म स्वार्थी बन गया? स्वार्थी है ये, स्वार्थी। स्वार्थी कैसे हैं? स्वार्थी ऐसे के क्या बोलते हैं? स्वार्थी क्या बोलते हैं? अरे ये हाँ, अब मसीह पे विश्वास करो तो ही बचाए जाओगे, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये सब सीखा हमने कि वो जो हमने छुड़ौती वाली क्लास में, नहीं ना, प्रभु यीशु मसीह दुनिया का बचाने वाला, संसार का बचाने वाला। कैसे? क्योंकि एक तीसरा रास्ता भी है जो आज आपके लिए नया है। वो तीसरा रास्ता हमें कहाँ मिलेगा? यशाया 35:8। इंग्लिश में उसके पता क्या बोला? हाईवे।
अच्छा।
हाईवे बोला, हाईवे। 35:8।
यहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा,
राजमार्ग हाईवे,
उसका नाम पवित्र मार्ग है।
हाँ।
कोई अशुद्ध जन उस पथ से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे।
मूर्ख भी हो
तो भी कभी ना भटकेंगे।
ऐसा हाईवे है ये, क्योंकि सारे वो उल्टे पुल्टे रास्ते निकल गए, अब ये सीधा ही बन गया कि आपको उधर ही लेके जाएगा। देखा, ये है वो तीसरा रास्ता, शाही रास्ता, हाईवे। हाईवे लिखा ना इंग्लिश में सिस्टर?
हाँ जी हाईवे,
हाईवे राजमार्ग, जिस पे मूर्ख भी चलेंगे तो भटकेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब तो मैं बताता हूं, ये मूर्ख किनको बोला है बाइबल में? मूर्ख किनको बोला है? कौन है पता मूर्ख? भजन संगीता 14:1, जी
मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं माना कर।
ये पता कौन है? ये है साइंटिस्ट, ये है जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, बोलते हैं कोई परमेश्वर ही नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे जो बोलते हैं परमेश्वर
है ही नहीं,
ये है मूर्ख। ये मूर्ख भी उस दिन उस रास्ते पे चलेंगे और रास्ता ना भटकेंगे। क्यों? क्योंकि 35:9 में पढ़ लो, यशाया 35:9 में,
वहां सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा।
सिंह ना होगा, अभी इसका मतलब ये नहीं शेर, ये सिंह चिन्ह है। और ये पावन कौन है सिंह पता?
राजा परमेश्वर।
पहला पत्रस 5:8, इसीलिए बोलते थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ।
सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है।
इस रास्ते से शैतान नहीं होगा गुमराह करने के लिए। और ये मूर्ख इनको समझ मिल जाएगी। यशाया 29:24,
उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे।
शिक्षा में वचन की शिक्षा, तो मतलब सबको समझदारी के कान और आंखें खुल जाएंगी, सब तो समझ लेंगे परमेश्वर कौन है, जान लेंगे परमेश्वर कौन है। और शैतान गुमराह करने के लिए होगा ही नहीं, तो भटकेंगे कैसे? शैतान का होगा, 1000 साल के लिए उसको बांध दिया जाएगा। चल बैठ अब तू, तेरा काम खत्म। देखा, और हिंसक जंतु, हिंसक जंतु का मतलब वो है जो शैतान के कंट्रोल में है, जो हाँ जो शैतान के द्वारा चलते हैं। हिंसक जंतु हैं ये जो शैतान के द्वारा बनाए हुए संगठन और बुरा करने वाले, नहीं बुरा करने वाले जो अड्डे, जैसे बार जुए के अड्डे और ये जो प्रोस्टिट्यूशन का जो काम चलता है, सिनेमा, ये गलत चीजें जो जितनी जो गुमराह कर रही हैं लोगों को, रास्ते से भटका रही हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। ठीक है, और यशाया 35:9 पढ़ लो।
वहां सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे।
छुड़ाए हुए जिनको मृत्यु से बचा लिया गया, यानी ये कलीसिया की बात नहीं, ये संसार की बात हो रही है, ये बचे हुए क्रिश्चियंस की बात हो रही है। उनको पुनर्थान मिलेगा, पुनर्थान मिलने के बाद सच्चाई मिलेगी, सच्चाई मिलने के बाद ये खुद ब खुद उस शाही मार्ग पे चलेंगे और जीवन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये है बाकी बची हुई जनता जो तंग रास्ते पे ना चल के शाही रास्ते पे चलेगी, हाईवे पे चलेगी। ये वो समय है जब जैसे आदम में सब भरते हैं, मसीह में सब।
तो एक क्वेश्चन होता है ना, जैसे मान लो एक तंग रास्ता एक चौड़ा रास्ता, तो तंग रास्ता तो जाता है परमेश्वर की ओर, वो भी जाता है, लेकिन वो हम जो तीसरे रास्ते के लिए जाएंगे वो तंग रास्ते से डायरेक्टली सीधा हाईवे हो गए,
तंग रास्ता उस वक्त खत्म हो जाएगा। अच्छा। ये हाईवे है, ये हाईवे है जो स्वर्ग को नहीं जाएगा, ये जीवन को,
जीवन पर
जीवन कराता है, ये धरती का जीवन है। ठीक है, तो परमेश्वर सबको बचा लेगा, परमेश्वर सबको समझ देगा, अपनी समझ देगा, ज्ञान देगा, सब समझ जाएंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा सत्य का, और सब तो इस रास्ते पे चलेंगे। तो मत्ती 13:29-30 में पढ़ लो एक वचन, लूका 13:29-30।
और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे।
तो आज ईसाई पता है इसका मतलब क्या, हमसे जो बाद में आता है वो आगे आ जाएगा, जो आगे जो पहले आया हुआ वो पीछे चला, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कुछ और है, इसका मत ये है बात पुनर्थान के बारे में, पुनर्थान के बारे में बात है कि जो बाद में मर रहे हैं वो पहले जी उठेंगे। जैसे आज मान लो, अगर आज जो लोग मर रहे हैं उनका पुनर्थान पहले होगा, जो पहले मरे हैं जैसे आदम ये वो बाद में जी उठेंगे। उसका कारण क्या है गहराई में मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। तो जब उठेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। मान लो, मैं उदाहरण लेता हूँ, मान लो आदम का सबसे पहले पुनर्थान होता है तो आदम को कौन पहचानेगा? आपको क्या पता आदम कौन है? लेकिन मान लो आप जिसको जानते हैं, अगर उसका पुनर्थान, अरे ये तो मर गया था, ये वापस आ गया, अरे पुनर्थान का समय। ऐसे जब चलता जाएगा तो आदम के सारा परिवार वापस आ जाएगा, केन अबल भी वापस आ जाएंगे, फिर वो बताएंगे ये तो हमारा बाप आदम है, फिर पता चलेगा हाँ आदम का भी पुनर्थान। तो देखो परमेश्वर का कितना बढ़िया तरीका होता है। और जब जी उठेंगे ना, जब जी उठेंगे कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे के वैसे। पढ़ लो अय्यूब 19:26-27।
और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर टूर टूर भी हो जाए,
कोई और नहीं होगा, वही होगा जो मेरा, मेरी आंखें वैसा ही देखेंगी जैसा मैं था। तो ये होगा परमेश्वर की शक्ति से पुनरुत्थान, जिस स्थिति में आप मरे उसी स्थिति में जी उठे। यशाया 29 का 18, 32 का 3,
29 का 18,
ये कैसे होगा? मतलब परमेश्वर जी उठाने के बाद सच्चाई देगा, सच्चाई कैसे देगा ये पढ़ लो।
कुछ समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे।
बहरे जिन्होंने आज कान बंद किए नहीं सुनना चाहते हैं वो भी सुनेंगे पुस्तक यानी बाइबल की बातें।
और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सुनता वे देखने लगेंगे।
जिनके आंखों के पर्दा आ गया, जो नहीं समझते हैं आत्मिक चीजें, उनको भी आत्मिक समझ दे दी जाएगी। पढ़ लो 32:3 भी पढ़ लो।
उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे।
फिर पर्दा नहीं रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने पढ़ा है ना अबकुक 2:14 में, परमेश्वर का ज्ञान धरती पे ऐसे भर जाएगा जैसे समंदर में पानी होता है ना। तो वो कैसे होगा? वो यही टीवी, वीडियो, इंटरनेट और ये आपका कंप्यूटर, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होगी जिससे सच्चाई फैलाई जाएगी। और ये जो पर्दा है ये धीरे धीरे लोगों की नज़र से उठा दिया जाएगा। यशाया 25:7 में पढ़ लो।
और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह किसी पर्वत पर नष्ट करेगा। छोटे छोटे कितने कीमती सभी छोटे हुए हैं आज पर, उन्होंने कभी इनको पहले ऐसे पर्दे से पता ही नहीं था।
तो कवरिंग मतलब पर्दा जो पड़ा हुआ है, कवरिंग है मौत और पर्दा है ना समझ, समझदारी की जो आंखें हैं उन पे पर्दा पड़ा हुआ है। क्योंकि यशाया 7:2 में यशाया क्या बोलता है, पूरा संसार घोर अंधकार में क्या है, छाया हुआ है। पढ़ लो यशाया 7:2।
देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है।
तो घोर अंधकार का मतलब क्या है? झूठ। क्यों झूठ छाया हुआ है? क्योंकि दूसरा कुरंतियां 4:4,
और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके में समाचार का प्रकाश उन पर चमके।
तो बुद्धि को क्या कर दिया है? किसने कर दिया अंधा? शैतान ने अंधा कर दिया है। परमेश्वर ने नहीं सीखा, शैतान ने अंधा कर दिया है बुद्धियों को। वो देख नहीं पा रहे हैं। उस वक्त उनको बुद्धि दी जाएगी, अंधेरे से निकाला जाएगा, झूठ से निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, बुढ़ापे से जवानी के दिन वापस आने शुरू हो जाएंगे। अयूब 33:24-25, अयूब 33:24-25।
तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए।
जवानी के दिन वापस लौट आ जाएंगे। मृत्यु से जब पुनरुत्थान होगा तो आज क्या होता है, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, लेकिन उस वक्त उल्टा हो जाएगा।
बुढ़ापे से जवानी की ओर
है। आपके बुजुर्ग अपनी जवानी में धीरे गिरडियां दान निकले हुए सब सब सही होना शुरू हो जाएगा। और हर एक को 100 साल का समय दिया जाएगा सुधरने का। जैसे आज आपका पुनर्स्थान शुरू हुआ, आपका 100 साल का समय शुरू, कि आपने 100 साल में पापों से तौबा करके सुधरना है। पढ़ लो यशाया 65:20।
उसने सिर्फ ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाले हैं वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर शापित होगा।
पापी को 100 साल दिए जाएंगे सुधरने के लिए, सुधर नहीं तो फिर ऐसे होंगे जो नहीं सुधरेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, होंगे। यशाया 26:10 पढ़ लो। 100 साल का समय सबको मिलेगा, सबको, हिटलर को भी, उसामा बिन लादन को भी, जितना गंदे से गंदा इंसान, गुरु नानक को भी, गुरु नानक को भी मिलेगा समय।
26:10 दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा, धर्मराज में भी वह कुटिलता करेगा और योगा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा।
फिर उसका क्या इलाज है जिसने सुधरना सीखा नहीं, सुधरना ही नहीं है।
ये हमारे इधर फौज में होते हैं, सिविल में नहीं सुधरा तो फौज में ही कभी नहीं सुधर सकता, तो ये फिर इनका क्या हुआ?
दूसरी मौत। तो इनका अंत होगा दूसरी मौत। वो परमेश्वर के दुश्मन जिन्होंने धार्मिकता से प्रेम ही नहीं करना है, धार्मिकता सीखनी ही नहीं है, 100 साल के समय के बाद दूसरी मौत में भेज दिया जाएगा जिससे कोई छुटकारा नहीं है। ठीक है, तो तंग रास्ता, दूसरा रास्ता खुला था प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन पे। ये हाईवे, ये शाही मार्ग कब खुलेगा? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद, दूसरे आगमन के बाद। और धरती की स्थिति क्या होगी उसके बाद? फिर भजन संहिता 22:27-28। भजन संहिता
22:27-28। पृथ्वी के सब भूमि देशों के लोग उसको सुमन करेंगे और उसकी ओर देंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने से सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य निवास की का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है।
सो इसके साथ ये तीन रास्तों की पढ़ाई तो खत्म होती है। दो रास्ते आज तक सुने हैं हमने, तीसरे रास्ते का ज्ञान समझ परमेश्वर की पुत्र आत्मा से हमें मिली। परमेश्वर का ही धन्यवाद करते हैं, आमीन।